ओम शांति। द्वापर युग से भगवान को पाने के लक्ष्य से हम पुरुषार्थ करते रहे हैं। भक्ति में तो सत्य ज्ञान भी नहीं था, लेकिन शास्त्रों के आधार से और गुरुओं के आधार से, जिन शास्त्रों में भी सत्य नहीं, जिन गुरुओं के पास भी सत्य नहीं, पर भगवान को पाने की भावना, लगन, जिस कारण पुरुषार्थ करते रहे, धर्म के नाम पर दान पुण्य करते रहे, पुरुषार्थ के नाम पर व्रत उपवास भजन कीर्तन करते रहे, पर बाबा कहता कि वो समय ही उतरती कला का, जिस कारण सब कुछ करने पर भी उतरते गए, सत्य ज्ञान नहीं, सच्चा सतगुरु नहीं, और वो समय भी उतरती कला का। अब तो हमें सत्य ज्ञान मिला है, हर बात का राज बाबा ने स्पष्ट किए हैं। स्वयं भगवान हमें पढ़ाते हैं। आज भी बाबा ने कहा ना कि ये सर्वोत्तम कल्याणकारी संगम युग का समय, याद की सैक्रिन से सतो प्रधान बनना। तो जब सत्य मिल चुका है तो पुरुषार्थ क्यों नहीं करेंगे? सत्य खोज की मेहनत कितनी की, बाबा कहते उसे भक्ति में पुरुषार्थ नहीं कहेंगे, क्योंकि कोई लक्ष्य नहीं, कोई स्वलक्षी दृष्टिकोण नहीं, फिर भी मेहनत की, भटकते रहे। अब जबकि सत्य मिला है ना, हम सभी ने बाबा को सिर्फ जाना नहीं है, सिर्फ पहचाना नहीं है, लेकिन बाबा की पूरी शिक्षाएं हम बच्चों ने प्राप्त की। तो इम्पोर्टेंट तो यही है ना कि जब सत्य मिला है तो हम क्या कर रहे हैं? स्वयं भगवान मिला है तो हम उनके साथ क्या कर रहे हैं? कई बाबा के बच्चे कहते हैं ना कि हमने बहुत भक्ति की, बहुत व्रत उपवास किए, तीर्थ यात्राएं की, पर जब साक्षात भगवान आए हैं तब हम क्या कर रहे? तब हम क्या कर रहे? वे आप कहो कि हमारे घर जरूर आइए, जरूर आइए, और जब आए तब आपको फुर्सत नहीं बात करने की, बैठने की। वे हमने आपको बहुत आमंत्रित किया, पर आए तब फुर्सत नहीं, तो क्या मतलब है ना? समय पर जो मदद करते हैं उसकी वैल्यू होती है। बाबा स्वयं आए हैं और वो विश्व कल्याण के कार्य में हम आत्माओं का सहयोग चाहते हैं, उस समय हम क्या कर रहे हैं? तो रोज इस बात को रियलाइज कर हमें अपने आप को तीव्र पुरुषार्थ में लगाना। क्योंकि ये सिर्फ बातें नहीं है, ये सत्य है ना निश्चय सबको कि हमें साक्षात भगवान मिले हैं, अनादि पिता और आदि पिता मिले, है ना? हम सबको स्पष्ट है ना, कोई मनुष्य से हम नहीं पढ़ रहे हैं, भगवान हमें पढ़ा रहे हैं। और ये समय महापरिवर्तन का और स्वयं को जितना ऊंच बनाना चाहे, जितना पवित्र बनाना चाहे, जितना दिव्य बनाना चाहे, हम अभी ही बन सकते हैं। तो ड्रामा भी फेवर में है, भगवान भी साथी है। तो हम क्या कर रहे? बचपन में प्राइमरी स्कूल में पढ़ते थे तो ऐसी बातें करते थे कि भगवान इतनी मिर्ची खिलावे तो खा जाएंगी, तो हम कहते थे हाँ। इतना घड़ा भर के पानी पीने के लिए कहें तो पी लेगी, तो हम कहते थे हाँ। भगवान कौन और क्या कहे वो कुछ पता ही नहीं था, हाँ? पर ऐसी बात करते थे कि शेर आ जावे तो भी नहीं डरेगी, तो हम कहते थे कि नहीं। और वो ऐसे करते थे, आंखें ऐसी हो जाती थी, तो कहते थे देखो डर गई। उस समय तो कुछ ज्ञान ही नहीं था कौन भगवान है और वो कैसी बात करते हैं, पर एक भावना श्रद्धा भगवान के लिए, वो इमेज कि वो कितना बड़ा है। तो मैं अक्सर सोचती हूं कि अब तो सच में भगवान मिले और वो क्या कह रहे हैं, वो रोज हम सुनते हैं मुरली में, तो हम उसे आचरण में लाने की कितनी हिम्मत करते हैं? खुद में तो शक्ति नहीं थी तो भी हम कहते थे कि हाँ इतनी मिर्ची खा लेंगे। अब तो सत्य और सहज बातें भगवान कहते हैं, उसे हम कितना धारणा में ले आते, और उसमें हम क्यों ऐसा कहें कि नहीं कर सकते, मुश्किल है। बाबा जो कुछ कहेंगे वो सत्य ही कहेंगे, कल्याणकारी ही कहेंगे। एक अच्छा सेंसिबल व्यक्ति भी सेंस की बातें करता है, तो भगवान जो कुछ हमें कहेंगे वो सत्य ही कहेंगे ना, कल्याणकारी ही कहेंगे। और वो करना संभव है तभी ही कहेंगे ना। ब्रह्मा बाबा की भी ये धारणा रहती थी कि ऐसी बातें कहें ही क्यों जो बच्चे ना कर सके। तो भगवान भी ऐसी बातें तो नहीं कहेगा ना जो हम ना कर सके, है ना? उनको भी पता है कि बच्चे कलयुग के अंत में हैं, लौकिक दुनिया में है, कई मुसीबतों के बीच है, फिर भी बाबा कहते हैं मींस करना पॉसिबल है, तभी तो कहते हैं। हम अपनी बुद्धि और शक्ति से सोचते हैं तो हमें लगता है कि नहीं कर सकते हैं, पर भगवान वाच मींस संभव है, तभी बाबा कहते हैं। हमें अपनी बुद्धि से नहीं सोचना है, बाबा की दी हुई दिव्य बुद्धि से सोचना है। और बाबा साथी हैं तो उनकी मदद भी है, इसलिए अवश्य हम सभी हर चीज को, हर ज्ञान की बात को, श्रीमत को धारण करने के लक्ष्य से ही आगे बढ़ते हैं। मुश्किल लगता है माताएं? बाबा जो कहते हैं वो पुरुषार्थ करना मुश्किल लगता है? हाँ? तो ये बाबा के ज्ञान की शक्ति है कि हम नियम संयम में, मर्यादा दिनचर्या में एक्यूरेट चलते, हमें मुश्किल नहीं लगता। सभी धारणा नियम दिनचर्या अब हमारा रूटीन है, हमें वो पुरुषार्थ नहीं लगता है। अब वो हमारी लाइफ है। कोई ये नहीं कहेगा मैं रोज खाता हूं, मैं रोज सोता हूं, मैं रोज नहाता हूं, भाई वो तो रूटीन है, वो तो हर कोई करता है, वो कोई हमें पुरुषार्थ नहीं लगता है। इसी प्रकार योगी जीवन, योगी दिनचर्या, वो हमारे लिए कॉमन है, हमें वो पुरुषार्थ नहीं लगना चाहिए। भाई मैं रोज अमृत वेले उठता हूं, रोज मुरली क्लास करता हूं, रोज कर्म योगी बनकर रहता हूं, ये रूटीन है, हमारा दिनचर्या है, इसको हम पुरुषार्थ नहीं कहे। इसके अलावा जो एक्स्ट्रा टाइम लेकर गहराई से जो तपस्या हम करते हैं या मनसा सेवा करते हैं, तो वो पुरुषार्थ। बाबा भी हम बच्चों को कहते हैं तीव्र पुरुषार्थ करो, तीव्र पुरुषार्थ माना बाबा ने कहा था कि कोई भी संकल्प या सेकंड वेस्ट नहीं करना, भल अभी आए हैं या पहले से आए। अब टाइम एंड माइंड वेस्ट नहीं करना, वो है तीव्र पुरुषार्थ। जब पता है कि हम बाद में आए हैं, अंत में आए हैं, अभी आए हैं, तो टाइम एनर्जी वेस्ट नहीं करना। क्योंकि कमाना और वेस्ट करना, व्यक्ति मेहनत करके कमाए और फिर उसे वेस्ट करे, तो उनको सेंसिबल नहीं कहे। भाई व्यक्ति मेहनत करके कमाता है और अगर बच्चे या परिवार वाले वेस्ट करते हैं तो उनको अच्छा नहीं लगे। वो कहते हैं ना, हमें पता है ना कितनी मेहनत करते हैं तब कमा पाते हैं। बहुत ऊंची मंजिल ब्रह्मचर्य की, पवित्रता की, जो और कोई नहीं कर पाते, वो हम बाबा के बच्चों ने आसानी से पार कर ली है ना। जो भी गुरु महात्माएं हैं, साधु संत है, वो ये शिक्षाएं तो देते हैं, दया करो, धर्म करो, दान करो, पुण्य करो, प्रेम से बोलो, हा? पर पवित्रता की बात कोई नहीं करता। ये तो बाबा के सत्य ज्ञान की शक्ति कि हम सब पवित्र और योगी सहज बन गए। परंतु ऐसे पवित्र योगी जीवन को हम किस में लगा रहे हैं, वो समय किस में सफल कर रहे हैं, है ना। जो भक्ति में नहीं कर पाए वो हम साधारण आत्माओं ने गृहस्थ में रहते पार किए, पर ऐसे पवित्र योगी जीवन का समय, श्वास, संकल्प, कई बार हम बहुत साधारण बातों में या तेरी मेरी बातों में, यहां की वहां की बातों में वेस्ट करते हैं। तीव्र पुरुषार्थी उनको कहेंगे ना जो लक्ष्य में केंद्रित है, रोज बाबा के सामने बैठते हैं तो अंतर्मुखी बनकर हमें रोज रिवाइज करना है कि क्या लक्ष्य है मेरा। रोज ज्ञान योग कर रहे हैं, रोज नियम धारणाओं में पक्के रहते हैं, ऐसा पवित्र योगी बनकर कौन सी मंजिल को मुझे पार करना। पवित्र योगी जीवन, ब्राह्मण जीवन, सच्चा और पक्का, वो प्लेटफॉर्म है जहां से हमें फरिश्ता बनने की उड़ान कर दी। इसलिए ब्राह्मण बन गए, नियम मर्यादाओं में चलने लगे, वो हमारी फाइनल मंजिल नहीं है, वो हमारा वो प्लेटफॉर्म है जहां से हमें फरिश्ता, सुदेवता बनना है। जैसे भाई ट्वेल्थ पास किया तो फिर आप अलग अलग स्ट्रीम में जाएंगे कि भाई डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, क्या बनना है। ऐसे ब्राह्मण बनने से हम देवता बनने की पढ़ाई पढ़ सकते। इसलिए रोज खुद खुद को रिवाइज कराना है, रियलाइज कराना है कि लक्ष्य क्या है। कई बार हम ब्राह्मण जीवन से ही संतुष्ट हो जाते कि हम चार नियमों का पालन करते हैं, रोज ज्ञान योग करते हैं, सेवा करते हैं, परंतु नहीं, हमारी मंजिल तो बाप समान बनने की, संपूर्ण अव्यक्त फरिश्ता बनने की। वो ऊंचा लक्ष्य बहुत जरूरी है। फिर उस लक्ष्य के प्रति एकाग्र होना है है ना, बोलने के लिए तो लक्ष्य हम कह देते हैं, सूर्यवंशी बनना है, लक्ष्मी नारायण बनना है, परंतु पूरी शक्तियां उस लक्ष्य सिद्धि के प्रति लगनी चाहिए। मन, वचन, कर्म, समय, ये हमारी शक्तियां हैं, उसी लक्ष्य की दिशा में लगनी चाहिए। बाबा जिसको कहते लक्ष्य और लक्षण समान हो, तो आप अनुभव करेंगे कि प्रैक्टिकली हम सफल हो रहे। हमारा पुरुषार्थ वो नहीं है कि वे सुबह शाम ज्ञान योग कर लिया बस, बाकी जैसे थे ऐसे जीते रहो, वो पुरुषार्थ नहीं है। बाबा कहते ना कि 2 घंटे के योगी नहीं हो, तुम्हारा योगी जीवन है। इसलिए योग के अनुरूप हमारा आहार विहार व्यवहार पहरवाइश दिनचर्या होने चाहिए, तो कहेंगे प्रैक्टिकल योगी। और दृढ़ता से प्रैक्टिकल पुरुषार्थ करना, लक्ष्य स्पष्ट, प्रैक्टिकली लक्ष्य के प्रति एकाग्र और दृढ़ता से पुरुषार्थ करना। तो जो तीव्र पुरुषार्थी बनना चाहते हैं, तीव्र पुरुषार्थी का अर्थ सिर्फ ये नहीं कि अभी हम 2 घंटा टाइम दे रहे हैं 4 घंटा दे, नहीं, हमारा जो भी टाइम है वो तो है ही बाबा के लिए। अब हमारा समय और बातों के लिए तो है ही नहीं। ठीक है, निमित्त अपना रोल प्ले कर रहे हैं, जिम्मेवारियां संभाल रहे हैं, वो तो हमें करना ही है। तीव्र पुरुषार्थ का अर्थ ये है, भाई फास्ट स्पीड से गाड़ी चलानी हो तो हम हाईवे पसंद करते हैं ना, एक्सप्रेस वे सिलेक्ट करते हैं ताकि हम स्पीड से जा सके। अगर हमें अपना पुरुषार्थ तीव्र करना है तो हमें भी ब्राह्मण जीवन में हाईवे को सिलेक्ट करना चाहिए, अर्थात मम्मा बाबा दादियों को फॉलो करना चाहिए। हमें छोटी मोटी गलियों में भटकना नहीं चाहिए। भल हम कहते हैं बाबा मम्मा को फॉलो करो, लेकिन प्रैक्टिकल कितनी बातों में 1-2 को ही फॉलो करते। बहुत छोटी छोटी बात में हम 1-2 से पूछते हैं, राय लेते हैं और 1-2 के कहे अनुसार चलते। देखो अपने आप को, आप देखो भट्टी में आना था तो भी तुम आएगी तो मैं आऊंगी, है कि नहीं, 1-2 को ही फॉलो करते। मुझे टाइम है मैं आ सकती हूं, पर वो नहीं आएगी तो मैं भी नहीं आऊंगी। एक दो को देखना और 1-2 को फॉलो करना। इसलिए हम एक दो जैसे ही बनते हैं। पर अगर लक्ष्य है कि बाबा जैसा बनना है, बहुत मुरलियों में स्पष्ट है बाबा क्या सोचते थे, क्या चिंतन होता था, बाबा क्या पुरुषार्थ करते थे, क्या कहते थे, वो सब मुरली में हमारे आगे स्पष्ट है। भले इन आंखों से बाबा को नहीं देखा, पर ज्ञान के नेत्र से ब्रह्मा बाबा क्या थे वो हम सबको स्पष्ट। चलो बाबा के आगे तो कोई नहीं था, है ना, पर हमारे सामने तो बाबा, मम्मा, दादियां, हमारे वरिष्ठ भाई बहने, हमारे सामने तो कितने एग्जाम्पल्स। क्योंकि मेन धारा को नहीं पकड़ेंगे तो आप भटक जाएंगे, आप भटक जाएंगे। इसलिए सदा बाबा, मम्मा और दादियों को फॉलो कर। तो क्लियर वे मिलेगा, आप उलझेंगे नहीं कि ये इतने पुराने हैं फिर भी ऐसे क्यों चलते, ये इतने पुराने हैं सेवा क्यों नहीं करते, ये इतने पुराने हैं व्यवहार ऐसा क्यों करते, है ना। ये प्रश्न तब है जब हम उनको देखते हैं। बाबा ने कहा था एक अव्यक्त मुलाकात में कि ज्ञान योग तो अच्छा लगता है, पर ब्राह्मण बनने के बाद लंगड़ाते क्यों है, क्योंकि बाप जैसा कोई मॉडल दिखाई नहीं देता है तो फिर मुंझते। हमारे सामने तो प्रैक्टिकल आदर्श है, दूसरा स्पीड फास्ट करनी है तो व्हीकल भी अप टू डेट चाहिए, है ना। बिगड़ी हुई गाड़ी होगी, बहुत पुरानी होगी, तो वो स्पीड नहीं पकड़ सकते। हमें अगर तीव्र पुरुषार्थी बनना है तो हमें भी अप टू डेट रहना, हमारा निश्चय, हमारा लगन, हमारा त्याग, तपस्या, पढ़ाई, है ना, पावरफुल चाहिए। ये फाउंडेशन है, अपने आप को देखिए, निश्चय है, पढ़ाई कैसी है, त्याग कितना है, तपस्या कैसी कर रहे, वैराग्य कितना है, है ना। सत्य समझ में आ गया तो वैराग्य जिगरी हो जाना चाहिए। जो हमारे विचार, वाणी और कर्म है, जिससे हम शक्ति भर भी सकते हैं, और अटेंशन ना रखो तो शक्ति खर्च भी हो सकती। इसलिए खुद का खुद पर अटेंशन। हम जानते हैं कि यही समय है पुरुषार्थ करने, है ना। हर बिजनेस की अपनी कमाई की सीजन होती है, सीजन है तो व्यक्ति कहीं भी वेस्ट नहीं करता है। अभी हमारी कमाई की सीजन है, हम ज्यादा अभी टाइम नहीं दे सकेंगे, है ना। खेती में भी किसान लोग कहेंगे कि अभी हमारी खेती की सीजन है, अभी हम ज्यादा टाइम नहीं दे सकते। माताएं भी कहती है अभी हमारे अनाज मसाला भरने की सीजन है। सीजन के समय व्यक्ति आराम, निंद्रा, मौज छोड़ देता है, दिन रात उसमें लग जाता है, क्योंकि ये कमाई का समय। कमाने के समय अगर कोई आलस्य करे, अलबेले रहे या मौज मजा करे, तो खर्च करने के समय क्या करेगा वो? देखता रह जाएगा, क्योंकि दूसरों ने कमाई के समय कमा लिया, फिर आराम से खर्च कर सकते हैं। और हमने कमाई के समय अलबेलापन, आलस किया, तो कमाने के समय दूसरों का मुंह देखते रहेंगे। तो सारे कल्प में कमाई का समय कौन सा है? संगम युग है। बाकी और युगों में तो कमाई की बात ही नहीं है। सतयुग त्रेता तो प्रारब्ध भोगने का समय, द्वापर कलयुग गंवाने का समय। केवल संगम युग में बाबा कहते हैं ना, जमा करने का समय है। अभी अगर हम अलबेले रहते हैं, आलस करते हैं या तेरी मेरी में वेस्ट करते हैं, तो सारा कल फिर क्या करेंगे? कोई ऐसी ऊंची प्रारब्ध बनेगी नहीं। और ये संगम युग है, जिस समय की धारणा 21 जन्मों के लिए कायम बनती है। ये तो बाबा के तरफ से जैसे कि एक वरदान है कि एक जन्म का पुरुषार्थ 21 जन्मों के लिए कायम बन जाएगा। और जन्म में ये हिसाब नहीं है, जैसे कहानियों में पढ़ते थे ना कि राजाओं के समय कोई बहुत अच्छी कला दिखाता था तो अनेक गुनी प्राप्ति करा देते थे कि ये 10 गांव तुमको देता हूं, उसकी कमाई तुमको मिल जाएगी। क्योंकि राजा है ना, तो वो बेहद का दे सकता है। और ये तो साक्षात भगवान है। अभी जो धारणाएं हम करेंगे, गुण धारण करेंगे, शक्ति धारण करेंगे, चरित्र हमारा ऊंचा बनाएंगे, तो वो अनेक जन्मों की प्राप्ति का हिसाब बन जाता है। और ये सत्य बातें मानने की बातें नहीं है, ये सत्य है। हमें इतना दिल से इन बातों को स्वीकार करके प्राप्ति कर लेनी। और कोई मुश्किल पुरुषार्थ नहीं। अज्ञानता में और ही मुश्किल पुरुषार्थ करते। अभी तो जो रियलिटी है वो ही प्रैक्टिकल करना है बस। इसलिए ये नहीं सोचना है कि हम गृहस्थी हैं, हम इतना थोड़ी कर सकते हैं। ये एक हमारी मिथ्या मान्यता है, परंतु नंबर वन संपूर्ण आत्मा कौन बना? ब्रह्मा बाबा, जो गृहस्थी बचरवाल थे। लौकिक परिवार तो है ही, पर इतने बड़े अलौकिक परिवार की भी जिम्मेवारी उठाई। नंबर वन संपूर्ण आत्मा ब्रह्मा बाबा, वो भी तो गृहस्थी थे। आध्यात्मिक उन्नति एक ऐसी उन्नति है, एक ऐसा क्षेत्र है कि इसमें लौकिक भौतिक सांसारिक कोई लिमिटेशंस इसमें नहीं आते। इसमें बस सच्ची लगन चाहिए। आज हम समर्पित हैं, पर समर्पित होने के बाद भी वो ही तीव्र पुरुषार्थी बनते हैं जिनको लगन है। बाबा तो साकार में जब थे, कोई भी बात को लिमिटेशन नहीं बना देते थे, अटकते नहीं थे कोई भी बात। ब्रह्मा बाबा खुद जब यहां आबू में शिफ्ट हुए, सब मेहनत के काम भी बाबा करते थे। कई भाई बहने बाबा को कहते थे कि बाबा आप क्यों करते, हम है ना, हम इतने बच्चे हैं, हम करेंगे। तो बाबा क्या जवाब देते थे कि बच्चे कल्प कल्प, जब शिव बाबा आएंगे तो मैं तो बूढ़ा ही होऊंगा, हर कल्प मैं तो बूढ़ा ही होऊंगा ना, तो क्या मैं मेहनत वाली सेवा करके मार्क्स जमा न करूं? बाबा का ये चिंतन था। मैंने कोई भी लिमिटेशन में बंधना नहीं, अटकना नहीं, आगे जाना। बाबा का ये चिंतन होता था। हम क्या सोचते हैं, अब मेरे से होता नहीं है, अब मेरे से होता नहीं है, ये क्यों हम सोचे? जो होता है वो करना है। हमसे नहीं होता है तो जो कर रहे हैं उनका उमंग उत्साह बढ़ाना, उनको और हिम्मत भरना है। कर्मणा नहीं तो मनसा सेवा करना है। जब कर सकते हैं तब अगर हम सेवा कर लेते हैं, तो जब नहीं कर सकते हैं तब अफसोस नहीं होगा। जब कर सकते हैं शरीर से, तन से, मन से, धन से, तब कर लेते हैं तो खुशी होती है कि हमने अपना जीवन खा पी के वेस्ट नहीं किया है, हमने दिल से बाबा की सेवा की। तो जब सचमुच कोई कारण है नहीं कर पाते हैं तो आपको दुख नहीं होगा, अफसोस नहीं होगा। बाबा कहते हैं ना, हड्डी दिल से हड्डी हड्डी सेवा कर। तो वो दुआएं भी हमें बहुत मिलती हैं। और बाबा कहते हैं ना, देह अभिमान छोड़कर हड्डी सेवा करेंगे तो हड्डी बिगर का फरिश्ता बनेंगे। जब सेवा करनी है तब हड्डियां सलामत रखते हैं तो फरिश्ता कैसे बनेंगे? दुनिया को पता नहीं है, फिर भी वो आश्रमों में मंदिरों में सेवा करने जाते हैं, है ना। भक्ति में भी बड़े बड़े प्रोग्राम होते हैं, मैंने तो देखे हैं। कि भक्त भी कितनी सेवा करते हैं। हमें तो पता है भगवान का कार्य चल रहा है, तो हड्डी जिगरी सेवा, तो वो दुआएं भी अवस्था बनाने में मदद करते हैं। कोई बच्चे वाला बाबा को कहता था कि बाबा दो चार बच्चे हैं, सारा दिन उसी में टाइम चला जाता है, तो बाबा कहते थे कि बच्चे तुम तो बहुत भाग्यशाली, तुम्हारे तो घर में ही बनी बनाई गीता पाठशाला, तुम्हें स्टूडेंट ढूंढने नहीं जाना पड़ेगा, तुम इन ठाकुरों को ही बैठ के ज्ञान सुनाओ। तो हमें अगर तीव्र पुरुषार्थी बनना है तो हमें ये लक्ष्य बनाना चाहिए कि कोई भी शारीरिक, सांसारिक, लौकिक, दैहिक, दुनियावी कोई भी लिमिटेशन को बीच में नहीं लाना। कई सोचते हैं ना, हम पढ़े नहीं हैं, हम ज्ञानदान की सेवा कैसे करें। हमें तो ज्ञान वो ही देना है ना जो रोज पढ़ रहे हैं। आप दुनियावी पढ़ाई नहीं पढ़े हैं, वो दुनियावी ज्ञान थोड़ी हमें किसी को देना। जो रोज मुरली से हम पढ़ रहे हैं वो ही सत्य ज्ञान तो दूसरों को देना है, तो अनपढ़ की तो बात ही नहीं है ना। इसलिए बाबा और मम्मा दोनों ऐसे एग्जाम्पल हैं कि हम कोई कारण नहीं बता सकते। कहीं कहते अभी तो आप युवा है, पर हमारी मम्मा भी तो युवा ही थी, दादियां सारी किशोर आयु की थी, युवा भी नहीं, 15, 16, 12, 14 साल की सब। बाबा बूढ़े थे, धनवान थे, वो भी नंबर वन बने। मम्मा युवा थी और गरीब साधारण घर की थी, वो भी संपूर्ण बनी। और जब हम अपने संकल्प से, दृढ़ता से पुरुषार्थ करते हैं तो परिस्थितियां भी अपने आप बदल जाती है, वो भी फिर सहयोगी बन जाते। तो जितना मुरली पर हम एकाग्र रहेंगे तो हमारी पटरी पर गाड़ी चलेगी। इसलिए बाबा कहते हैं सी फादर फॉलो फादर। अब तो प्रैक्टिकल समय का सिग्नल दिख रहा है ना, कि संगम युग भी अभी अपनी अंतिम स्टेज पर आ गया है। जिस स्थिति के साथ आप अपना संगम युग समाप्त करेंगे उसी स्थिति से सतयुग आरंभ करें। समझ में आई बात? अभी जिस स्टेज से आप संगम पूरा करेंगे उसी स्टेज से आपका सतयुग शुरू होगा। इसलिए अलबेला नहीं रहना, बाबा के ज्ञान योग को धारण करने से हमारा जीवन इतना ऊंच बना, कोई नुकसान तो नहीं हुआ है ना? हमारा जीवन कितना उच्च बना है। तो उस ज्ञान योग को संपूर्णता के लक्ष्य से धारण करना है ना। आज हम बाबा के बने, हमारा जीवन पवित्र बना, हम निश्चिंत बेफिकर बने, हमारी आदतें बदली, कितनी ऊंची धारणाएं बनी और इससे हमारा जीवन कितना अच्छा बना। अंधश्रद्धा गलत रस्मों से मुक्त हुए, तो क्यों नहीं बाबा की हर श्रीमत का, हर धारणा मर्यादाओं का हमें पालन करना है। डबल बाबा कहते हैं ना, तीव्र पुरुषार्थी माना नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप। देखो अभी भी जो महामारी कोरोना के कारण लॉकडाउन हुआ, जो भी परिस्थितियां आई, लोग टेंशन में आ गए, डिप्रेशन में आ गए, भय में आ गए, डिस्टर्ब हो गए। हम बाबा के बच्चों का अनुभव क्या रहा, हमारी बुद्धि में क्या आया, हम सबकी बुद्धि में तो यही जवाब आया ना कि बाबा ने पहले से हमें कहा। बाबा ने पहले से हमें अंतिम परिस्थितियों की बातें कही है। हम घबराए नहीं, चिंतित नहीं हुए, क्योंकि बाबा ने हमें मेंटली प्रिपेयर किया। ऐसी कोई मुरली नहीं जिसमें महाविनाश की बात ना की हो। ऐसी ऐसी परिस्थितियां आएगी, बाबा ने हमें पहले से सतर्क कर दिया। इसलिए हमें शॉक नहीं लगा ये क्या हो रहा है। लोग सोच भी नहीं सकते, घर से बाहर जाना नहीं, किसी का आना नहीं। हम बाबा के बच्चों को रोज अभ्यास है कि कब सबसे फ्री हो जाएं और बाबा की याद में बैठे। तो ये प्रिपरेशन, ये फायदा है, क्योंकि हमें कोई ऐसा अटैचमेंट नहीं, कोई आवे बात करे कहीं जावे। हम सब तो और ही ये चाहते हैं कि और ही हम सबसे फ्री होके बैठे, मुरली पढ़े, योग करें। हमें शांति, एकांत, उसका हमें अभ्यास। तो सभी ने अपना टाइम सफल किया ना लॉकडाउन के समय। हाँ, पढ़ाई अच्छी की, मुरलियों की, योग तपस्या का चार्ट बढ़ाया, मनसा सेवा की, ये बाबा की देन है, मदद है। आपस में हम साधारण न बन जाए। कई बार हम आपस में कॉमन बन जाते, इसलिए साधारण बातों में, विचारों में टाइम वेस्ट होता है। भल हम रोज साथ पढ़ते हैं, सेवा करते हैं, पर हम अलौकिक है, हम अलौकिक है। को स्वमान की स्थिति कहते हैं। बाबा कहते हैं ना, जब हम स्वमान में स्थित नहीं है तो विचार भी साधारण आएंगे, टाइम भी साधारण खर्च होगा। इसलिए दादी जानकी कहती थी ना, मैं कौन, मेरा कौन और मुझे क्या करना है। सुनने में ये साधारण शब्द, परंतु मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि हर क्षण हम ये रियलाइजेशन में रहे कि हम कौन है। अब हम मनुष्य नहीं, योगी हैं, साधारण नहीं, अलौकिक है। 18 जनवरी जो बाबा की मुरली रिवाइज की गई, वो भी तो यही है ना, स्वमान में रहे। मेरा कौन है? आज दुनिया में दो यही कमजोरी अनुभव करते हैं लोग कि मेरा कोई नहीं, अकेलापन और खालीपन, मेरे में ताकत नहीं और मेरा कोई नहीं। योगी माना जो हर क्षण भगवान को साथी महसूस करते, तो ये खालीपन अकेलापन महसूस ही नहीं हो सकता है हम बच्चों। और जब ये क्लियर है कि मैं कौन हूं और मैं किसका हूं, मेरा कौन है, तो मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, वो विवेक अपने आप स्पष्ट आ जाता है। फिर हमें किसी से पूछने की जरूरत नहीं, मूंझने की जरूरत नहीं, हमें अपने आप क्लियर रहता है कि मुझे क्या करना। तो ये बहुत सुंदर मौका आप सबको मिला है मधुबन तपोभूमि में, पुण्य भूमि में, परिवर्तन भूमि में भट्टी करने का चांस मिला है। तो जरूर शांति में, एकांत में बैठकर स्वदर्शन करना है, खुद अकेला बैठकर अपने आप से बात करो कि मुझे अब क्या करना है। आज भी बाबा ने कहा, हर आत्मा को हक है संपूर्ण प्राप्ति करने का, इसमें मेल फीमेल की दृष्टि की बात नहीं। सोचो भक्ति में तो ये शास्त्र आप पढ़ सकते हैं, आप नहीं पढ़ सकते, ये मंदिर में जा सकते हैं, ये नहीं जा सकते, स्त्रियां नहीं जा सकती है, ये जाति वाले नहीं जा सकते। भगवान के इस संगम युग के कार्य में कोई ऐसी बात नहीं, हर आत्मा को संपूर्ण बनने का हक है, पूरी प्राप्ति करना है, पूरा वर्षा लेना है, पूरा सत्व प्रदान बनना है। उस लक्ष्य से जब अपने आप को देखेंगे तो तुरंत लगेगा कि मुझे कहां क्या सुधार करना है, क्या परिवर्तन करना है। तो अपने आप पर है, अपने आप पर है सत्य ज्ञान। एक सरीखा हम सबको मिला है, हम कितने फोकस्ड है, केंद्रित है, उस पर सारा आधार है। तो ये जो समय मिला है, देखो सेवा नहीं कर पाते, आठ आठ दस दस मास हो गए, कोई सेवा नहीं कर पाते। वो जो जमा होता था सेवा करके, वो भी मौका नहीं रहा। अब हम पुरुषार्थ करके शक्तिशाली अपने आप को बना लें। क्या विचार है सबका? जो है वही ठीक है या अपने आप को और पावरफुल बनाना है? क्या विचार? भक्ति में कहते हैं ना भाई, यथा शक्ति यथा भावना। हम कर रहे हैं संगम युग में तो पूर्ण शक्ति और पूर्ण निश्चय से करना। तो अवश्य साइलेंस में एकांत में बैठेंगे, ब्रह्मा बाबा के तुलना में अपने आप को देखेंगे, और अभी भी मौका है, हम अपने आप को और पावरफुल बना सकते हैं। ओम शांति। खड़े हो जाइए। कुछ संकल्प दृढ़ कर लेते हैं। मैं आत्मा बोलना नहीं, सत्य ज्ञानी और परमात्मा योगी हूं। संगम के इस समय मैं जितना महान बनना चाहूं, पावन सतोप्रधान बनना चाहूं, अभी बन सकती हूं। रामा और बाबा दोनों साथी। राइट साइड घूम जाइए। अंतर्मुखी बनकर स्वदर्शन करना है। मंजिल कितनी ऊंची है, समय की मार्जिन कितनी है, और मेरे पुरुषार्थ की स्पीड कितनी है। समय कम है, मंजिल ऊंची है, मुझे तीव्र पुरुषार्थी बनना। राइट साइड घूम जाए। मुझे लक्ष्य के प्रति एकाग्र रहना है। और कोई इच्छाएं नहीं, जास्ती तमन्नाएं नहीं, कोई मनमर्जी मनमत नहीं, जो बाबा की श्रीमत है उसी के प्रति केंद्रित रहना है। राइट साइड घूम जाएं, पूरी दृढ़ता के साथ श्रीमत का स्वरूप मुझे बनना है। मुझे बाप समान बनना ही है। मुझे अपने चेहरे और चलन से बाबा को प्रत्यक्ष करना, राइट साइड घूम जाए, मुझे बाबा का नाम रोशन करना है। संगठन को शक्तिशाली बनाना, ओम